दुनिया में विख्यात है सुनो ओरछा ग्राम। धरती बुंदेली जहां बुंदेलन को धाम। किस सदी सोलहवीं में हुए वीर सिंह जूदेव और राज और छे में करें लगा राम से नेव। तीन द्याह राजा करे थे ग्यारह सुकुमार और बड़ी मालकिन से हुए कुंजा और जुझार। और छोटी की कूख में पली बुंदेलन बोल और सोलह सौ नौ में हुए बुंदेला हर दौल। हाँ, ये एक ऐसी कहानी है बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड का नाम ही बुंदेलों की बदौलत है। बुंदेलखंड के बारे में एक छंद सुन लीजिएगा।
कि जल के भूखंड पे विशाल एक हिंद देश ताके मध्य लागे बुंदेलखंड ताल सो। संस्कृति सभ्यता वीरता और बोली को देश और विदेशन ने फैलाए जाल सो। चंपत को लाल भव बुंदेला वीर बांको एक कालहू के कालन को बनो महाकाल सो। देखे हैं विश्व में विशाल वीर लाल किंतु देखो न छत्रपति वीर छत्रसाल सो।
अभी भी झांसी से 16 किलोमीटर दक्षिण में मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ जिले में एक नगर है बेतवा नदी के किनारे। उस नगर का नाम है ओरछा। 16वीं शताब्दी में महाराज वीर सिंह जूदेव वहां राज करते थे। महाराज वीर सिंह जूदेव ने तीन शादियां की और तीनों शादियों से उनके 11 लड़के हुए और एक लड़की हुई जिसका नाम हुआ कुंजावती। उन तीनों रानियों में सबसे बड़ी रानी के जो सबसे बड़ा लड़का हुआ उनका नाम था कुंवर जुझार सिंह और जो सबसे छोटी रानी थी उसके जो कुंवर हुए एक ही कुंवर उनका नाम था हरदौल सिंह। लेकिन जब हरदौल पैदा हुए तो हरदौल और जुझार सिंह की उम्र में इतना फर्क था कि जुझार सिंह की शादी हो गई थी और हरदौल पैदा हुए थे। जब हरदौल पैदा हुए थे उसी समय पर जुझार सिंह के भी एक लड़का पैदा हुआ था। अब देखिए ये कहानी ऐसी मर्यादा ऐसी आन बुंदेलों की कि जैसे आप सुनेंगे। वैसे मैंने और जगह भी गाया है हरदौल चरण, लेकिन आज मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि टी सीरीज के माध्यम से आप तक ऐसी चीज भेज दूं शायद आपने पहले आज से पहले कभी ऐसी चीज न सुनी होगी। देखें आप।
कि भैया की
भैया की मर्यादा राखी राखो कुल को पानी धरती पे हर दोल लला की नैया कौन पानी धरती पे हर दोल लला की नैया कौन पानी धरती पे हर दोल लला की नैया कौन सानी में घरी एक शुभ आई नगर और छा में महलन के द्वारे बजी बधाई और प्रभु की लीला को न जाने ऐसी विपदा आई और इते जन्म हर दोल लए उत माता स्वर्ग सिधाई जैसे ही हरदोल का जन्म हुआ उनकी माँ स्वर्ग से धार गई बताओ इतनी विपत्ति में लेकिन ये साथ दिया उनके बड़े भाई जुझार सिंह की पत्नी चंपावती क्या किया उन्हें दूध पे बाहर दौल पाल दे गिधि ने ए लिखी थी और भैया बड़े जुझार सिंह की पत्नी चंपावती की माँ की गोद मिली ना लेकिन ममता ऐसी मिल गई माँ की गोद तो नहीं मिली लेकिन ऐसी ममता भाभी ने दे डाली कि माँ की कमी पूरी कर दी क्या किया माँ की गोद मिली ना लेकिन ममता ऐसी मिल गई और दिन दूनी और रात चौगिनी वंश बेल जा चल गई और ऐसो प्रेम मिलो भाभी को माँ की ममता भूले और गोद मिली और दूध मिलो लाला अपने मन माँ बेटा को प्रेम देख के थकित भई जा पानी माँ बेटा को प्रेम देख के थकित भई जा पानी धरती पे हर दोल लला की नैया कौन सानी
धरती पे हर दोल लला की नैया कौन सानी
Thank you. सिंह की पत्नी रानी चंपावती। हरदौल की माँ खत्म हुई, वो उठाकर ले गई, अपना दूध पिलाया और उस बेटे को अपनी गोद में सुलाया और पाल पोस दिया। भावी का एहसान देखो जरा, और जब बड़ा कर दिया। अब कुछ दिनों में क्या हुआ कि महाराज वीर सिंह जी देव हरदौल के पिताजी चूंकि वृद्ध हो गए थे, स्वर्ग से धार गए।
कछु दिन में वीर सिंह जू राजा स्वर्ग से धारे और राजा बने जो झार सिंह जू नगर और छाबारे।
महाराज वीर सिंह जू तो स्वर्ग देव स्वर्ग लोक को चले गए। यद्यपि वो चाहते थे जिंदा जीते के ओरथे का राज और ओरथे का राजा हरदौल बने, लेकिन हरदौल बहुत छोटे थे, इसलिए उनके स्वर्ग से धारने के बाद ओरछा का राज चूंकि बड़े भैया के नाते महाराज जुझार सिंह को मिला और चंपावती महारानी बन गई।
एक दिवस भोजन कर दे राजा महलन ने आए और दो भैया जेवन बैठे रानी थार सजाए।
महाराज जुझार सिंह और हरदौल दोनों भैया बैठ गए एक साथ महलों में भोजन करने के लिए। अब क्योंकि वो हरदौल से इतना प्रेम करती थी बेचारी, इतना प्रेम करती थी कि औलाद से भी ज्यादा करती थी, अब और क्या कर सकती थी। उसे खबर नहीं रही कि सोने का थार किसके सामने जाना और चांदी का थार किसके सामने जाना। दोनों थार लाई और सामने ऐसे परस दिए। लेकिन
प्रेम मगन मन भई चंपावती कछु ध्यान ना कीन्हो और सोनो थार दो लाले राजे चांदी को दीन्हो।
चांदी का थाल महाराज जुझार सिंह के सामने पहुंच गया। तब
थोड़ो सो सोचो राजन फिर भूल गए बातन ने और कई बार ऐसो हो गो तो लाला के बचपन में।
ऐसो कई देर बहुत महाराज जुझार सिंह ने ध्यान नहीं दिया, उस पर सोचा और छोड़ दिया कि जाने दो शायद रानी भूल गई होगी। अब
भोली भाली रानी और लाला भी भोले भाले और प्रेम मगन दो रहे महल में राजा मने कसाले। अब की खां का लिख दई विधाता को नऊ की जान, का लिख दई विधाता को नऊ की जानी। धरती पे हर दौल लला की नैया को नऊ सानी।
धरती पे हर दौल लला की नैया को नऊ सानी। धरती पे हर दौल लला की नैया को नऊ सानी।
शिकार के खेलन और कोई समय पे पुरो बीज जम गौ है मुगलन के मन।
उस समय मुगलों का साम्राज्य था हिंदुस्तान पर, तो चूंकि महाराज जुझार सिंह और हरदौल, ये ओरछा राज का कर नहीं देते थे। ऐसे मुगल बहुत जलते थे उनसे कि ये राज का कर क्यों नहीं देते। उनने क्या किया कि महाराज जुझार सिंह शिकार को गए थे, इते एक पठान काबुल से भेजो नगर ओरछा आओ, और दई ललकार नगर में ऊने पहलवान आ जाओ। बुंदेली धरती ते आके को अगर ललकारे, ये बुंदेलखंड का पानी है, इस धरती पे ललकार सहन नहीं करी जा सकता। बुंदेली धरती पे आके को अगर ललकारे, तो वीर बुंदेला लाला सुन के देखत नहीं पछारे। और हरदौल दौड़ गए, पहलवान भी थे, ललकार नहीं सहन कर सके और दौड़ गए लड़ने के लिए कि मैं देखूंगा कैसा पठान लड़ने आया। भाई पहलवानी दंगल में दोनों कुश्ती लड़ दे, और भाव सिर जोर पठान और हरदौल धरन पे गिर गए। पहलवानी ने पठान सरमौर हो गया, हरदौल बार बार धरती पे गिर जाते थे। ये घिर की अटारी पे चढ़ी चढ़ी चंपावती देख रही थी हरदौल की भाभी माँ। देखा जो देखो भाभी माँ ने, तब धीरज छूट गओ है, और दासी भेज दई लाला खां महलन बुला लो है। धरी हाथी तलवार महल में नृप जुझार ने दई थी, और कभू काऊ खाना दई यो रानी से ऐसो कही थी। राजा जुझार सिंह ने महारानी को एक तलवार दी थी एक बार, और ये कहा था कि ये तलवार तुम मेरे अलावा किसी को नहीं दोगी कभी नहीं, ये वचन ले लिया था। लेकिन जब उस पहलवान से लाला हरदौल को भाभी माँ ने हारते हुए देखा कि ये कहीं मेरा लड़का मर ना जाए, तो वो धीरज छूट गया, अंदर बुलाया महलों में, अब वो तलवार उठा के दे दी, बेटा ले जाओ जाओ लड़ो। तलवार का नाम था भवानी। जाओ लड़ो जीतो बेटा दे दई तलवार भवानी, जाओ लड़ो जीतो बेटा दे दई तलवार भवानी। धरती पे हरदौल लला की नई आंखों नौ सा,
धरती पे हरदौल लला की नई आंखों नौ सा, धरती पे हरदौल लला की नई आंखों नौ सा।
तलवार देवर को दे दी, लो बेटा तुम लड़ो और ले जाओ। हरदौल पहुंचे लड़े, अब जाए भिड़े हरदौल उते अरु देर करी ना पलकी और परो मठान। एक बार में, सिर्फ एक ही बार हरदौल पहुंचे सूरज के सामने मुंह करके खड़े हुए तो मरो पठान। आज लाला ने राखी बुंदेलन की। अब बातलवार कोई दिन से भाभी ने दई लाला खा और ममता में सब भूल गई नहीं देने थी लाला खा। ये भूल गई कि हमें ये तलवार अपने देवर को देना थी या नहीं। महाराज ने खूब मना किया लेकिन तलवार दे दी और हरदौल ने अपने कमर में बांध ली। अब ऐसी बातें कालो कहिए लाला भौजाई की और जैसी माँ बेटा की होती तो लाला भाभी की। बैठत उठत हंसत खेलत लग गए भाभी के अंगे। हंसत उठत बैठत सोत परत खेलत हर चीज में भाभी के साथ। अगर सोना भी है तो भाभी के साथ सोना। बैठत उठत हंसत खेलत लग गए भाभी के अंगे और धीरे धीरे बड़े भये हरदौल समय के संगे। अब काल करम गति लेख लिखी गति काल हुने ना जानी। काल करम गति लेख लिखी गति काल हुने ना जानी। धरती पे हरदौल लला की नैया कौन सानी।
धरती पे हरदौल लला की नैया कौन सानी। धरती पे हरदौल
जब भाभी ने लाला 22 को हो गए है सुंदर सौ परिवार ढूंढ के तुरंत ब्याह कर दो है। 22 साल की उम्र में 22 साल की उम्र में मात्र उस लड़के ने उसने कई तारीफ की अपनी जिंदगी में। 10 साल की उम्र में वो 3 लड़ाई जीत चुका था और 22 वर्ष की उम्र में 7 लड़ाइयां लड़ चुका था और महाराज चंपत राय छत्रसाल के पिताजी उनका साथ दिया चंपत राय। 22 साल की उम्र में लाला जीती 7 लड़ाई और चंपत राय रहे रण संगी कभू करी नानाई। उते मुगल चाहत ते कब दो भैयन खा लड़ो आवे और जे दो लड़ मरे और छा राज हम ही पा जावे। मुगल शासक ऐसा चाहते थे 16वीं शताब्दी में कि ये दोनों भाई अगर लड़ मरे आपस में तो ये ओरछा का राज हमें मिल जाएगा और उनका टैक्स भी मिलने कर भी मिलने लगेगा। देखो आप सब बहुत दिनन से सोचत बैठे मौका ना मिल पावे ओ कैसो का हम करें और छा मिट्टी में मिल जावे। तब ये मुगलों की बात है, उनके मन में ऐसा था।
और फार राजा जो झार था संग मिला लो अपने, और फार राजा जो झार था संग मिला लो अपने, और लालच दिखा दिखा के उनके बड़े बना दे सपने।
महाराज जुझार सिंह को अपने साथ मिलाया और मिला करके उन्हें लालच दी कि तुम ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, ऐसा कर करके उन्हें अपने साथ मिला दी और दो भाइयों में फूट डाल दी। और फूट जानते हो कैसी होती है,
फूट परे से मिट गई थी लंका कैसी राजधानी, अब फूट परे से मिट गई थी लंका कैसी राजधानी, धरती पे हर दौल लला की नैया कौन सानी,
धरती पे हर दौल लला की नैया कौन सानी, धरती पे हर दौल लला की नैया कौन सानी।
भैया तो
संबत 1665 से, ये संबत 1688 शुरू हुआ, माने हरदौल की 23वीं वर्ष। और उस 23 वर्ष की उम्र में उस बुंदेला वीर ने मात्र छोटी सी उम्र में वो करके दिखा दिया जो 23,000 वर्ष जीने के बाद भी आदमी नहीं कर सकता, वो किया। हुआ क्या,
अति बसंत पंचमी संबत 1688 और 23 वर्ष के लाला हो गए विधि ने गसना गांसी।
उस विधाता की गति का पता कौन चलता है कब क्या करता है। अब 23वें वर्ष में जब शुरू हुए प्रवेश किए और धीरे धीरे 23 वर्ष के हो गए बसंत पंचमी को, तब क्या हो गया।
नृपत जुझार लौट रहे थे बंगाल लड़ाई लड़के, ओ मुगलन को एक दूत हिदायत खां बोलो है जरके।
मुगल शासकों में उसी समय जुझार सिंह बंगाल से लड़ाई लड़के लौट रहे थे और रास्ते में ही हिदायत खां को भेजा कि तुम रास्ते में रोको, दो भाइयों के बीच ऐसी फूट डालो कि जिनमें से दोनों टूट जाएं। हिदायत खान ने वही किया, आए बीच रास्ता में ही ओरछा के पहले रोका और कान के पास लग करके और बोला,
तुम तो नाए माए घूमत हो तुम्हें खबर कछु है ना,
और महलन भीतर गुल खिल रहे हैं, बोलो पापी देना। तुम्हें पता है राजन कि तुम्हारे महलों में क्या हो रहा है? महाराज जुझार सिंह ने कहा, हिदायत अच्छी तरह से बात करो। बोले, मैं सही कह रहा हूं, आपके महलों के भीतर गुल खिलते हैं। महाराज जुझार सिंह ने कहा, किसके गुल खिलते हैं? हिदायत बोला, क्योंकि चुगलखोर है ना, और चुगलखोर अपनी चुगली से वाकिफ नहीं आ सकता। बोला के हैं तुम्हारी हर दौल महल में और तुम्हारी रानी, और टारो तुम दे जात देख के उनकी सेना कानी। अब बोले, मुझे पता है कि तुम उनकी बातें सुन करके इधर उधर की बात करते हो, और सुनते नहीं हो, देखते नहीं हो, टाल देते हो।
बोले, नृपत क्रोध में आके कैसे सांची माने।
हिदायत, हमें ये बताओ, क्या तुम्हारी बात तो सच है? इसमें कोई सच्चाई है, कोई दम है? हिदायत बोला, महाराज विश्वास ना हो तो बताऊं। महाराज बोले, एक काम करो।
अरे बोले, नृपत क्रोध में आके कैसे सांची माने, और गलत बात ना करो हिदायत लगे उबे समझाने।
वो बोला,
ना मानो तो महलन में तुम जइयो चुप्पी साधे।
बताता है कि अगर मेरी बात ना मानो तो तुम आज महलों में जाना, और बिल्कुल चुपचाप जाना, किसी से कोई बात नहीं करना।
ना मानो तो महलन में तुम जइयो चुप्पी साधे, और जो कटार दईती धर बे हर दौल कमर में बांधे।
तुमने महारानी को कोई कटार दी थी? महाराज जुझार सिंह ने कहा, हाँ दी तो थी। बोले, वो कटार तुमने रोका था कि किसी को ना देना? बोले, हाँ ये भी कहा था। बोले, देख लो, वो महारानी ने हर दौल को दे दी अपने देवर को, और वो तुम्हारा छोटा भैया हर दौल वही कटार कमर में बांधे होगा, देख लेना जाके।
वाह वाह वाह, चुगलखोर की बात आई इतनी पक्की। तो जरे फपोला भय भीतर से नृपति अकल बोरानी, जरे फपोला भय भीतर से नृपति अकल बोरानी, धरती पे हर दौल लला की नैया को गए अब चक्कर में।
देखो, क्योंकि चुगलखोर कैसा होता है, एक जरा सी बात आपको बताऊं
कि सूरबीर चूक जाते अपनी कमानों से, और नारशीश चूक जात को पथ के ठहराने से, वृक्ष को चढ़ैया कबहू वृक्ष भू से चूक जात, नदी को तेरैया कबहू चूकत तेराने से, कि पंडित पर चूक
कोई न्याय चूक जात और न्याय चूक जात खास छोरा के चलाने से। कहत कबीर रामाधीन बड़े ज्ञानी और ध्यानी चूक जात पे एक नहीं चूके चुगल चुगली चलाने से। तो चुगलन की बातें सुन राजा फंस गए अब चक्कर में और जो कटार रानी खा दई देखी हर दौल कमर में। जैसे ही महलों में पहुंचे तो जो कटार उन्होंने रानी को दई थी और मना किया था वो देखी कि हर दौल के कमर में बंधी है। अब भूपति महाराज जो झार सिंह जी को अपनी पुरानी सब बातें याद आई रानी ने जो की थी सोचने लगे। महलन के अंदर पहुंचे और रानी खां बोलो आयो और लाल नेत्र कर क्रोध में भर के ऐसो वचन सुनाओ। बोले रानी सुनो तुम्हें हर दौल बहुत है प्यारो और सांची सांची हमें बता दो को आए तुम्हारो। तुम्हारी का रिश्तेदारी है इसी हर दौल से। महारानी को बुलाया चंपावती को महाराज जुझार सिंह ने अपनी पत्नी को और बोले ये बताओ कि हर दौल से तुम्हारी कौन सी रिश्तेदारी है। हमने सुना हर दौल तुम्हें बहुत प्यारा है और तुम हर दौल से बहुत प्रेम करती हो। तो बोली महाराज प्रेम तो करती हूँ इसमें कोई दो राय नहीं कि हर दौल से प्रेम नहीं करती हूँ। महाराज बोले तो ये सही से ही हमें बता दो कि वो तुम्हारा होता कौन है। पाप समानो तुमरे मन में हम खा दिखा परो है और कंचन थारे हुए दैते चांदी को हमें धरो है। बाबा याद आई बोले इसीलिए तुमने कई बार ऐसा किया रानी कि जब खाना खाने हम दोनों बैठे तो सोने का थाल जो राजा को मिलना चाहिए मुझे वो तुमने मुझे ना देकर के हरदौल को दे दिया और चांदी का थाल जो हरदौल को मिलना चाहिए उसमें तुमने मुझे भोजन परोस दिया तो तुम्हारे मन में पाप है। वाह एक महारानी से और पतिव्रता महारानी से ये शब्द कह देना कोई मामूली बात नहीं। जल गई अंदर से बोली बोली और कुछ कह लो जो कहना हो। जो झार सिंह बोले एक तलवार दई थी और कई थी हमने दे दी कहा था वो तलवार देते समय। एक तलवार दई थी कई थी काहू खाना दईयो और बेत हर दौल कमर में बांधे अब सांची के दईयो। वो तलवार भी तुमने जो मना किया था मैंने कि किसी को नहीं देना तुमने हरदौल को दे दी वो कमर में बांधे। अब बेचारी क्या रोती कि मैंने क्यों दे दी। अरे उसने तो इसलिए दी थी कि कहीं वो पठान हमारे लड़के को मार ना डाले हमारे हरदौल को हमारा देवर मर ना जाए तो शायद ये तलवार रक्षा कर लेगी इसीलिए मैंने दे दी थी लेकिन नहीं। और राजा बोले कि दाग लगा दो कुल में तुमने कैसी तुम महारानी। दाग लगा दो कुल में तुमने कैसी तुम महारानी। धरती पे हर दौल लला की नैया कौन सा।
धरती पे हर दौल लला की नैया कौन सा। धरती पे हर दौल लला की
Thank you.
हर दौल हमारो ओ जी खां दूध पिलाओ कूलर का प्राणन से प्यारो।
बोली तुमने ये पूछा ना कि तुम्हारा क्या रिश्ता है, वो तुम्हारा कौन होता है, तो महाराज वो एक तो हमारा है, हम दोनों का है, तुम्हारा छोटा भाई हमारा देवर है, और फिर मैंने तो दूध पिलाया, वो मेरी औलाद है, औलाद के समान मुझे प्यारा है। ये क्यों पूछा आपने कि वो कौन होता है, मेरा लड़का होता है।
बोली रानी सुनियो राजन हे हर दौल हमारो और जी खा दूध पिलाओ कूलर का प्राणन से प्यारो। छाती से चिपकाओ खां अपने संगे पारो ओ कैसी बात अपने ने के दई उने कहा बिगारो।
महाराज हमें जा बता दो कि लड़का ने सुनाओ लव का है, ऐसा उन्हें कहा कर दो, कौन सा दोष लगा दो हुए।
दाग लगे ना कभू वंश में चंपावती है जोलो।
रानी बोली कि तुम बुंदेला आओ और हम तुम्हारी छत्राणी है महारानी का हो, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं धरती पे जोलो ये ओरछा के वंश में दाग न लग पाए महाराज, ऐसी बात मत करो।
दाग न कोन लगे वंश में चंपावती है जोलो और ऐसी बात करो ना राजा बोल समर के बोलो।
अब एक बात बताओ महाराज
कि कैसी शंका मन में आ गई सांची आज बता दो और कैसे शंका दूर हुए जो तनक मोए समझा दो।
तनक जो भर बता दो कि जब शंका कैसे तुम्हारी दूर हुई है, जो तुम्हारे मन में जो भ्रम पैदा हो गया जो भ्रम कैसे दूर हुई है।
जितनो भोजन बना धरो है उमे जहर मिलाओ।
कितनी बढ़िया बात करी राजा ने, जैसे ही रानी ने पूछी कि हमें जौहर बता दो महाराज कि जो शंका तुम्हारे मन में हो गई कि हरदौल तुम्हारा कौन होता है, और आपके मन में आपने ये कह दिया कि तुमने पाप किया और साथ में ये कह दिया कि तुमने कुल को दाग लगाया, तो ये बात तो सिद्ध हो गई कि तुम्हें हमारे और हरदौल के ऊपर शक है, और अगर शक है तो ये बताओ कि ये शंका तुम्हारी कैसे दूर होगी।
कहे जो झार सुनो रानी जो अपनी चाव भलाई और जितनो भोजन
जितना तुमने भोजन चाहा अगर भलाई चाहती हो।
कहे जो झार सुनो रानी जो अपनी चाव भलाई ओ अपनो दाग बचाने तो जा मानो बात हमारी। जितनो भोजन बना धरो है उमे जहर मिलाओ ओ ओई जहर के भोजन अपने हाथन उए खिलाओ।
ये शंका का निवारण है कि अगर तुम्हें दाग मिटाना चाहती हो तुम अपनी जिंदगी का अपने दामन का, तो वो जहर जितना भोजन है पूरे में जहर मिला दो और मिला करके वो हरदौल को खिला दो अपने हाथ से, बस मैं जान जाऊंगा कि तुम पतिव्रता हो सही हो।
बोली सुनत लगी गोली सी, बोली सुनत लगी गोली सी गिरी धरन बिल खानी, रानी गिरी धरन बिल खानी, धरती पे हर दौल लला की नैया को नऊ
धरती पे हर दौल लला की नैया को नऊ सानी, धरती पे हर दौल लला की नैया को नऊ सानी।
Thank you. जगी मूर्छा से बोली कहां अकल तुम्हारी।
पहले तो रोती चिल्लाती, जैसे ही राजा ने कहा कि उसे जहर खिला दो तुम अपने हाथ से, तो बेहोश होकर धरती भी गिर पड़ी। लेकिन होश आया, होश में खड़ी हुई, अब बोली महाराज तुम पागल हो गए हो या विधाता ने तुम्हारी मती मार दी है, बुंदेला हो तुम।
रानी जगी मूर्छा से बोली कहां अकल तुम्हारी, ओ हमें लगत के पागल भैया तुम्हारी मती गई मारी। बुंदेलन की शान में ऐसो धब्बा लगे करारो।
महाराज अगर ये बात आपने कही ना कि हरदौल को देवर को जहर खिला के मार डालो तो तुम बुंदेला हो, क्षत्रिय हो, और ओरछा के बुंदेलों की शान में वो धब्बा लगेगा कि सारी जिंदगी धोते धोते सात जन्मों तक नहीं छूट पाएगा।
बुंदेलन की शान में ऐसो धब्बा लगे करारो, ओ को नाम ना ले है जग में अपयस हुए तुम्हारो।
इस दुनिया में कोई तुम्हारा नाम नहीं लेगा, कैसे जुझार सिंह थे राजा ओरछा के, ये क्या कह रहे हो।
तब राजा गए दरबार, गई रानी महलन के अंदर।
राजा ने कोई जवाब नहीं दिया, वो तो कह गए कि उसे देर खिला दो और चले गए। वो चिल्लाती रही बेचारी रानी कि ये क्या कह रहे हो, वो देवर है, मैंने दूध पिला के उसे बड़ा किया है, मेरी औलाद है वो, मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं उसे जहर नहीं खिलाऊंगी।
तो राजा गए दरबार, गई रानी महलन के अंदर, और इतने आंसू बह गए रो रो के भर गए समंदर।
लेकिन अब कौन आंसुओं की कीमत करने वाला था, कौन देखने वाला था कि महारानी रो रही है कि क्या हो रहा है।
सुनप जुझार अपने हाथन भोजन में जहर मिलायो।
देखिए राजा की बात, दरबार से आए लौट के, उन्हें सोचा कि ऐसा ना हो कि रानी कहीं जहर न मिला, तो जितने भोजन रखे थे सभी भोजनों में जहर मिला दिया। महाराज जुझार सिंह अपने हाथ से मिलाया, रानी के सामने मिलाया।
नृप जुझार अपने हाथन भोजन में जहर मिलाओ, निकल गए बाहर कह गए हर दौले अब ही बुलाओ।
घर से बाहर निकल गए, महलों से बाहर गए, और बोले हर दौल को अभी बुला लो, अभी बुला के तुरंत उसे खिलाओ, हमारे सामने खिलाओ, इतना कह के निकल गए। तब
कर शिकार हर दौल लौट कर भाभी के ढिंग आए।
एक ही तो भाभी थी, वही भाभी थी, वही मां थी, वही ममता थी, वही गोद थी, वही दूध था, उसी के हाथ का भोजन पाते थे, शादी हो गई थी, एक लड़का हो गया था, लेकिन भाभी के हाथ का ही भोजन करते थे, किसी दूसरे के हाथ का नहीं। क्यों, भाभी ने दूध पिलाया ना, इसीलिए। भाभी के पास आए, बसंत पंचमी का दिन था, आए संबत 1688 में। देखिए वो दिन कैसा होगा उस जिंदगी का।
कर शिकार हर दौल लौट कर भाभी के ढिंग आए, और भूख लगी कहकर भाभी से भोजन तुरंत मंगाए।
भाभी हमें भूख लगी है, हमें खाना दे दो। बोली लाला चलो ना, आज ऐसा खाना खिलाऊंगी कि तुम्हें सारी जिंदगी भूख नहीं लगेगी कभी, आज तो बहुत अच्छा खाना खिलाऊंगी, चलो मेरे साथ।
कि बैठो लाला भोजन पालो, बोली रानी पानी। बैठो लाला भोजन पालो, बोली रानी पानी, ऐसी बोली रानी पानी। धरती पे हर दौल लला की नैया खोलूं सानी।
धरती पे हर चार बॉल ललाती नैया कौन उसानी धरती पे हर बॉल ललाती नैया कौन उसानी
भोजन कराएंगे राम राजा मंदिर में राम राजा सरकार के सामने आज वहां भोजन मिलेंगे लाला महलों में नहीं मिल सकते चलो
हाथ पकड़ के ले गई मंदिर के आंगन देखा रो हाथ पकड़ ले गई मंदिर के आंगन में बैठा रो बने गवाई राम राजा सरकार करे निपटारो
हमारे तो राम राजा सरकार है सिर्फ दे ही निपटारो करे दे ही गवाही यही बात के हम निर्दोष हैं हमने लाला खा जहर नहीं दो हम जहर नहीं दे रहे लेकिन क्या करती बेचारी एक तरफ पति का याद है उसके तुम जहर दे दो हरदौल को दूसरी तरफ पुत्र के समान देवर धर्म स्नेह उभय मत घेरी क्या करती अगर जहर खिलाती है तो पुत्र के समान देवर जाता है और अगर जहर नहीं खिलाती है तो पतिव्रत धर्म के दामन में दाग लगता है दोनों बातें निभाई कैसी राम राजा सरकार को अपने गवाही बनाया कि भगवान राम तुम ही हमारे गवाही हो
हाथ पकड़ ले गई मंदिर के आंगन में बैठा रो और बने गवाही राम राजा सरकार करे निपटारो परसो थार और लियाई धर दो लाला के सामे और टप टप असुआ चुअत बैठ गई पालाला के बामे
बामे अंग में बैठ गए बैठ के रोने लगी बेचारी रोज आचर की हवा करके खाना खिलाती थी उस दिन सामने बैठ गई और रोने लगी
भाभी माँ को रोवत देखो थार छोड़ दो उनने ओ कैसी रो रही बोलो भाभी काके दई है किनने बेहवल हो गए लाला उनके बोल कड़े ना मुख से और बोल परी बैठी थी पेलों भारी पति के दुख से
चिल्ला लगी पहले पे बोल पड़ी एक तो पति के दुख से दुखी थी इधर लाला बोल पड़े बिल्कुल बेहुआ लोग लाला रोने लगे हरदौल रोने लगे भाभी क्या बात है रोज आंचल की हवा करती थी आज सामने बैठ के रो रही हो भाभी क्या बात है कुछ बताओ ना किसी ने कुछ कहा है आपसे बारे भोले लाला
धीरज धर के सुनियो लाला नैया दोष तुमाओ और मन के कारे तुम्हारे भैया ने जो दोष लगाओ
जिन्हें तुम बड़ो भैया मानत बाप के समान मानत ये बड़े भैया दिल के कारे हैं मन के कारे हैं उनकी का लखनी है जब दोष लगा दो और
भैया बड़े कछु के जावे भाभी कान न दियो और कछु न दोष लगाओ हमें जो भैया से के दियो
भाभी भैया से के दियो कि हमें कोई दोष मत लगाओ हम कोई दोषी नहीं है भाभी तुम गंगा के समान पवित्र हो भैया के दोष लगाने से क्या दोषी बन जाओगी नहीं ब्रह्माई तो माँ हो तुम सवाल ही नहीं उठता कि तुम दोषी हो के दई उनने उने कान दो दे राजा तुम रानी। अगर भैया कह गए तो भी ओरछा के महाराज हो आप, महारानी हो, क्या परेशानी है। के दई उनने उने कान दो दे राजा तुम रानी, भाभी दे राजा तुम रानी। धरती पे हर डोल लला की नैया को नौ सानी,
धरती पे हर डोल लला की नैया को नौ सानी।